Namadhuvan Sunyana Sunyini Karimam Mahabhavad Kaanubhavu Tavana Vipurani Madhi Pahurubhavai Minashaitanya Vajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Malaikatu Sunyana Adhanai Ya
شکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی اس شب میں ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق بخشی, ہمارے دلوں کو, وجود کو اپنی یاد کی طرف غفلت سے نکال کر ذاکر فرمایا. یہ سب اس کا فضل اور کرم ہے. انسان کی کوئی حیثیت نہ کوئی طاقت ہے کہ کچھ کر سکے. آج کے اس ذکر میں الحمدللہ سب سے بڑا تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات جس میں ہمیں ذکر کی توفیق دے رہے ہیں, شب جمعہ ہے جو بہت ہی بڑی رات ہے. نور اللہ نور کہ یہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ماہ ربیع الاول میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو نصیب ہو رہی ہے. یہ انعامات ہیں جو آخرت میں جو کھلیں گے انشاءاللہ. اس وقت ہمیں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے, لیکن یہ خود اللہ کی طرف سے جو عطا ہو رہے ہیں انعامات, اس کی قدر اس وقت ہوگی جب آنکھ بند ہوگی کہ کیسے اللہ کے کرم پر انسان پہ فضل ہوئے ہمارے پر. لوگ جب غفلتوں میں تھے, بے خبر تھے, ان چیزوں کی اہمیت نہیں رکھتے تھے, ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو اپنی یاد کی طرف منتقل کیا. بہت بڑا احسان ہے, یہ تو آخرت کا پتہ چلے گا انسان. تو پھر لائٹ اپن لائٹ تو یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ذکر کی مجلس دی شب جمعہ میں دی, مائے ربیع الاول میں دی, اس سے بھی اونچی بات کہ آج ربیع الاول کی تاریخ بھی بہت عجیب ہے, یعنی 12 ربیع الاول. کون سی رات ہے یہ؟ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عظمت والی یہ رات ہے اور کیا ہلچل ہوگی اس رات کے اندر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا نور اور نور پھیلا ہوا ہے اس رات کے اندر. شب جمعہ, پھر شب ولادت, تو پھر وہ ماہ ربیع الاول. یعنی یہ وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عظیم, سب سے زیادہ سعادت, سب سے زیادہ برکت جتنی بھی دنیا کے اندر بنی ہے دنیا, ان میں سب سے زیادہ بابرکت, باسعادت, باخوشی جو گھڑی ہے وہ گھڑی ہے جس میں نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے. اس گھڑی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس کی قیمت ہی نہیں ہے جس کے مقابلے ہیں کسی چیز کی بھی. سب سے بڑی عظیم جو ہے گھڑی وہ ہے جس میں نبی پاک اس دنیا کے اندر تشریف لائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر پوری کائنات پہ احسان کیا, فضل کیا, کرم کیا. آپ اسی رات میں سوموار کی رات تھی, تاریخ میں کچھ اختلاف ہے مورخین کا, کچھ 12 کہتے ہیں, کچھ 8 کہتے ہیں, کچھ 9 کہتے ہیں, لیکن اسی پر زیادہ اجماع ہے 12 پر اختلاف موجود ہے. بہر کوئی بھی ہو, جو گھڑی اس ماہ کے اندر ہے اس گھڑی نے پوری ماہ کو چمکا کے رکھ دیا. عثمان بن ابی عباس کی والدہ کہتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو میں حضرت آمنہ کے ساتھ تھی, تو میں کیا دیکھتی ہوں اچانک کہ پورا زمانہ نور سے بھر گیا, اور اتنا نور تھا کہ جیسے بڑے بڑے چاند اس کو چمک رہے ہیں. میں نے دیکھا, یہ سیرت کی کتابوں میں لکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو, میں کوئی جوڑ نہیں رہا ہوں کہ باتیں آپ کے سامنے, اٹھا کے دیکھ لیں آپ. اب یہ وہ سیرت کی کتابیں جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں, جس پہ کوئی شک نہیں ہے. تو فرمایا کہ حدیث میں ہے, جو روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نور یا نور سے بھر گیا, اتنا نور کہ سارا زمانہ بھر گیا, اور جیسے چاند اور سورج میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے نزدیک آ گئے کہ میں ان ستاروں کے اندر میں نے سمجھا کہ میں دب جاؤں گی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں خاتون کی والدہ مردہ کہ جس وقت ولادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے دیکھا نور ہی نور ہر طرف, اور اتنا بڑا نور کہ مجھے شام کے محلات آنے نظر آنے شروع. اس میں بھی محققین نے بیان کی وجہ کہ کیوں شام کے محلات نظر آئے, اس کی کیا وجہ تھی, کیونکہ سب سے پہلے جو اسلام پھیلا شام ہی کسے پھیلا, بصرہ سے, اور شام بہت معتبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے انتہا دعائیں بھی دی ہیں, انبیاء بھی آئے ہیں, اور جو بڑے سارے واقعات ہوں گے آخرت تک میں وہ بھی شام سے ہوں گے. بہت ہی بابرکت سرزمین ہے, اگر حرمین کے بعد کوئی زمین اگر بابرکت ہے تو شام کی زمین ہے, اتنی مقدس زمین ہے شام کی, بلکہ جو 40 ابدال ہیں وقت کے وہ وہیں مقیم ہوتے ہیں, اور وہ بھی قطب ارشاد بھی غوث بھی وہیں ڈیرے رکھتے ہیں اپنا. یہ بزرگان دین فرماتے ہیں اس بارے کے اندر. تو فرمایا کہ جس وقت آمن فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا کہ نور اتنا نور کہ مجھے شام کے محلات نظر آئے, نور روشن ہو گیا ساری طرف. اور موقعین لکھتے ہیں کہ دوسری طرف کیا حال تھا, کفر کا کیا حال ہو رہا تھا, کسرو کیسر تھے, سب سے بڑے کافر تھے اور سب سے بڑا جن کا نمکا تھا, زلزلہ آیا اور ان کے محلات کو ہلا کے رکھ دیا اس ولادت کے وقت, اور جو ان کے بڑے بڑے محل کے کنکرے تھے 14 کنکرے جیسے زمین بوس ہو گئے, گر گیا زمین پر. فارس کی وہ آگ جس کو یہ پوچھتے تھے جو صدیوں سے چل رہی تھی یکدم بجھ گئی ساری, بت جتنے بھی تھے سب اندھے ہو گئے. جا الحق و زحف کو باطل, حق آ گیا تھا اور باطل ختم ہو چکا تھا. ये विराद से बाहर साधक थी नरीय करीम सरस्वत नियमित शीख लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर हर मुसलमान को और मोमिन को एक रूहानी से खुशी होनी चाहिए, और होती है अल्हम्दुलिल्लाह हरेक को, हरेक होती है। क्योंकि ये वक्त वो घड़ी है कि जिसके अंदर हमें दीन मिला, इस्लाम मिला, ईमान मिला। अगर आप ना होते तो कुछ भी ना होता, कुछ भी ना मिलता। कुरान में फरमाया है कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद फरमाए फजलुल्लाह व बिरहमतिही ज़ालिक, कि जो फरमाए से बता कि मेरे फजल और मेरी रहमत से तुम्हें जो इनाम जो नेमत मिले उस पर तुम फलजफ रहो, खुशी मनाओ। कहते तो लिखते हैं इस पर, इससे बड़ी ना कायनात में कोई खुशी है, ना वक्त है, ना कोई नेमत है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई हमें। सबसे बड़ी नेमत जो है अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाई वो नबी पाक में जो दुनिया में तशरीफ लाए। आपका वजूद, आप ना होते तो क्या होता, कुछ भी नहीं था। आप आए तो सब कुछ आया, आप आए तो हमें ईमान मिला, आप आए तो हमें कुरान मिला, आप आए तो हमें अल्लाह मिला, हमें क्या पता था। अंधेरे जुल्मत थी जब नबी पाक ने तशरीफ लाए, कुछ भी नहीं था। क्या हालत थे, बुतों को पूजते थे, बुतों के साथ दोस्ती थी, जुल्म की इंतहा थी, फहाशी थी, बेईमानी थी, कुछ पता ही नहीं था इंसान को इंसानियत है क्या। कत्ल हो रहा तो कत्ल ही हो रहा है, पुश्तों तक कत्ल चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, मार रहे हैं, न औरतों को अदब न पता, कुछ तहजीब ही नहीं थी इंसान के अंदर। शराब नाच गाने मार कुटाई कत्ल आम। लेकिन अल्लाह ने रहम फरमाया और आप सलम तशरीफ लाए इस दुनिया के अंदर। नबी करीम सब आयत नाज़िल, वस्बिर नफ्सक मा यज़ुरुन रब्बान, कि जाइए नबी को इस आयत में हुक्म फरमाया अल्लाह ताला ने कि इन लोगों के साथ जाके बैठिए। कौन लोग? जो सुबह शाम मेरी याद के अंदर मस्त होते हैं। आप सब तशरीफ लाइए मस्जिद नबी में। देखता हूँ एक जमात थी सहाबा की, क्या थे बेचारे साहबा, क्या माल था उनको, क्या दौड़तें थी, क्या सामान था। मुश्किल से अगर ऊपर का कपड़ा था तो नीचे का कपड़ा मुश्किल से मिलता था। फटी हुई धोती होती थी, बाल बिखड़े होते थे, चमड़े सख्त होते थे, मुंह खुश्क होते थे, पेट अंदर होते थे भूख से प्यास से। इस कैफियत के अंदर भी देखा उस जमात को, साहबा की जमात थी। क़यामत तक क्या इंसानों के पैदा हो सकते हैं मुझे बताएं आप? क्या इन नफूस का कोई मुकाबला किया जा सकता है किसी सहाबी का भी? आज का मुसलमान सहाबी पतन करता है माशाल्लाह सुभानअल्लाह, वो कहता है हम तो बड़े मोमिन मुसलमान हैं। उस अंदाजा लगाए ऐसे मनफूस ऐसे इंसान जिनकी कैफियत आप देखें इस किस्म की, वो कर क्या रहे थे? माल कमाना उनको भी आता था, पैसा कमाना आता था, सब कुछ आता, बाद में करके भी दिखाया। लेकिन जिस तरह जो नबी पर मुझे साथ हल्का था साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल अजीब कमाल लोग थे। बैठे हैं इसी हालत के अंदर, पता नहीं कितने से खाना नहीं खाया, वो अल्लाह के नबी तलाश करते हुए तो देखे कि जमात बैठी है, बाल बिखरे हैं, समझ में खुश्क है ना को लिबास। अब तशरीफ ले गए तो साहब का देखा तो माशाल्लाह बड़ा एजाज था, तभी हम पहुंच जाना वहां पे। तो आपने पूछा कि मुझे इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहने के पास बैठो, ये हैं कौन लोग, कर क्या रहे हैं? तो आपने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तोड़ गया बेचारे, उसने पता नहीं गलत काम कर रहे हैं, पकड़ो ये मारिया। सुभान अल्लाह, अजीब जवाब दे उन्होंने, अजलसा यज़कुरुल्लाह नअमतहु, क्या रसूल सलम तो यहां सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह की नेमतों की शुक्राना अदा कर रहे हैं। फिर नेमत बताई कि किस नेमत पर, माँ दौलत औला तो थे ही नहीं, गाड़ी मकान तो थे ही नहीं, फिर कुछ उनके पास नहीं था, किस नेमत पर शुक्र हो रहा है, मुझे आप सोचें आप, अल्लाह किस नेमत पर शुक्र कर रहे हैं, साहब भूख पे कर रहे हैं, प्यास पे कर रहे हैं, अरसे से खाना नहीं खाया उस पर शुक्र कर रहे हैं। देखें जरा ये बात, जन्नत में उन्होंने भी जाना है, जन्नत में हमने भी जाना है, मोमिन वो भी थे, मोमिन हम भी हैं, ये भी सोच लें, लेकिन फर्क देख लें आप। अल्लाह अकबर, कहते हैं यार सुन, डर के कहते हैं हम जो कर रहे हैं अब पता तो नहीं, हम काम जो कर रहे हैं, हम तो अब कर तो रहे हैं वही काम, हमें तो यही समझ है कि हम पैदा इसीलिए हैं और काम यही है। जस्कुल्ला अहमद, क्यों भाई, कैसे हम तो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, तो किस चीज का शुक्र कर रहे हो, क्या चीज है तुम्हारे पास, यदि शुक्र तो हम इस चीज के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह सुभान व तआला हमें आपके जरिए से इस्लाम बता फरमाया है, आपकी उम्मत में दाखिल किया है, अगर आप ना होते तो हमें इस्लाम कैसे मिलता, हमें ईमान कैसे मिलता, हमें क्या पता था जन्नत, हम तो बुद्धू थे, कत्ल करते तो हम सालों सदियां हमारी कत्ल चलता था, हमें तो अकल शोर नहीं था, अंदाजा लगाए, ये सोच रहे हैं आप उन लोगों की, भूख नंग प्यास कुछ नहीं, लेंगे सोच आप देखेंगे, उस पे शुक्र कर रहे हैं, उसकी कोई वक्त नहीं है हमारे पास माल की दौलत की, असल जो दौलत है हमारे पास वो ये है कि हमें इस्लाम मिल गया, हमें ईमान मिल गया, हमें आप मिल गए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, उसके बारे में और क्या चाहिए, खत्म मामला, किससे हमारा खत्म हो गया। अभी हम बड़े ताज्जुब से सुनिए की बातों, नदी से आप पढ़ के देखिए, इतनी ताज्जुब से सुनी आपने कि शुक्र कर रहे हैं और शुक्र के साथ रास्ता कौन सा अख्तियार किया उन्होंने, तस्करुल्लाह व नहमदुहु, सुभान अल्लाह, इन नबी का आने पर उनसे मुनसिन होकर शुक्र उस रब का कर रहे हैं, इतना ताज्जुब हुआ नबी पाक को, पहली तो बात यह थी अल्लाह ताला ने वही बताया उनको, जाओ उनसे मिलो, क्या लोग होंगे मुझे बताया, वही करके बताया, उनको तलाश करके बैठ जाए उनके पास, बस बिन मुस्तक बैठे जाए उनके पास, कुछ करें उनको आपके जा पहुंचना होगा, उनको बाग बाग कर देगा, आशिक हैं आपके पक्के हो, और ये मैं आप जो तशरीफ सवारी उनके लिए मैं उनको इनाम देना चाहता हूं इस चीज का, अल्लाह के इनाम होते हैं, देख ये इनाम मिलते हैं जब इंसान ऐसे काम करते हैं ना, देख ले आप, कहते हैं ये अल्लाह के नबी ने ताज्जुब से कहा, अजीब बात की कि खुदा की कसम वल्लाह ही तुम ये काम इसलिए बैठे हो, तो इतने अजीब बात है जो तुम कर रहे हो, सोचिए आप कि कितनी अजीब बात होगी, ये बंदा अपनी ख्वाहिशात को तर्क करता है, दुनिया को तर्क करता है, वजूद को तर्क करता है, नींदों को तर्क करता है, और वो बैठकर मजमे की शिकल में अल्लाह को याद करता है, वापस ये कुछ छोटी चीज है, उस वक्त की मिसाल दी जा रही है, आप बताए दौर वो भी सख्त था, दौर ये भी सख्त है, یہ بتا دو آپ کو, یہاں اسلام چلاتا مفلس سے مفلس کی حالت میں پہنچ جائے گا. آج بھی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں. آج کون نہیں جانتا ان حدیثوں کو, کون قرآن نہیں پڑھتا, کتنی دفعہ قرآن میں اللہ نے ذکر کے بارے میں کہا, کتنی تعریفیں مجمع کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہیں, مجھے بتائیں. تو ایک نہیں, حدیثوں کا بار ہے. اور پھر محدثین نے اتنے بڑے بڑے رسالے, فضائل اعمال, اتنا بڑا رسالہ لکھا ہے شیخ حدیث نے, فضائل ذکر, ان پہ بھی اعتبار نہیں. فضائل منی بھی بڑا اعتبار ہے, کتاب چھپ جائیں گے ایسے پیسے آپ کما سکتے ہیں, اس سے آپ کی دکان چل سکتی ہے, اتنی بکے گی نا وہ دکان ہو اور لینے والے سارے مسلمان ہوں گے. آج یہ تو معاملہ ہے, یار اس ملک میں چلو پیسہ وہاں ملتا ہے, اس ملک میں چلو پیسہ ملتا ہے, کچھ بتائیں حرام حلال کچھ, پیسہ وہاں ملتا ہے, مال وہاں ملتا ہے, سب کچھ قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے. میرا بات سمجھ رہے ہیں, میری فرق نظر آیا آپ؟ یہ نہیں کہ دور وہ بھی سخت تھا, وہاں اس وقت ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمایا, اور دور یہ بھی سخت ہے, اللہ تعالیٰ اس دور میں بھی ایسے لوگ پیدا فرمائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انصاف کے ترازوں میں لکھا ہے کہ جب انسان اس دور کے اندر وہ عمال کرے گا, الحمدللہ بڑے بڑے انعامات ملیں گے ان کو, ایسے ایسے انعامات بتائے کہ جو صحابی تھے وہ بھی حیران ہو گئے, اللہ ان کو ہم کو یہ انعام ملے گا جو ہمیں نہیں مل رہا, کہتا ہاں ان کو ملے گا یہ انعام. میرے بھائیو زندگی تو بہت مختصر چیز ہے, روایتی چیزیں تو ہم بہت منا سکتے ہیں, جس سے مزے ہو نا وہ فنکشن تو ہم بہت کر سکتے ہیں, جس سے چسکے ہو نا ہمارے وہ تو آپ مسجد بڑھا لیں اسی وقت مسجد بڑھ جائے گی, سیکنڈ ہی لگتا. لیکن جو اللہ چاہتا ہے, جن چیز کو اللہ محبوب کرتا ہے, جن باتوں کو اللہ پیار کرتا ہے, جن سے اللہ کا قرب ملتا ہے, جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے, شیطان نے آج کو ڈھانک دی ہے, اس سے دل اچاٹ کر دی ہے. ان کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں, بیوقوف سمجھتے ہیں, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, نتھنگ ایٹ آل. میں نے بتا رہا آپ کے سامنے ساری چیزیں, نوٹ کی جو قیمت ہے اس وقت, ڈالر کی, پاؤنڈ کی, ریال کی, آپ وہاں ہم تو ذکر کی وہاں کیا قیمت نظر آئے گی. آج تک کسی کو میں نے کسی ملک میں ہجرت کرتے نہیں دیکھا کہ وہاں ذکر ہوتا ہے وہاں چلتے ہیں. اس کی بڑی بات یہ ہے کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جاتے نہیں دیکھا آپ نے کسی کو, کسی کو یہ اٹھ کے سوچتے بھی نہیں دیکھا کہ چلو یار چلتے ہیں یہاں بیٹھ کے ذکر کریں گے. اہمیت ہی نہیں ہے اس چیز کی, تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا. یہ کیا چیز ہے کہ اللہ راضی ہوگا ہمارے سے اس طرح, کہ اللہ کے نبی راضی ہوں گے ہمارے سے اس طرح, کیسے سکتے ہیں؟ پھر ذرا تھوڑی مصیبت آ جائے تو اللہ پہ شکوے کرتے ہیں, ہم دیکھو جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں, یہ ہم نے مسجدیں بنائی ہیں, جی ہم رمضان رمضان گزارتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, جی ہم تو یہ بھی ہم تو وہ بھی ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. وہ دین نہیں ہے یہ, دیکھیں صحابہ کرام کا دین ہے, دین وہی ہے جو صحابہ کرام کا دین تھا, جو ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر کا دین تھا, دین وہی ہے, مجمع وہی لگا رہے ہیں, نبی انہی کے پاس گئے ہیں, اعلان انہی کی بخشش کے ہو رہے ہیں, اور قیامت تک جو ان کی پیروی کرتا جائے گا وہ وہی عمل کرتا رہے گا, یقین ان کو وہی چیزیں ملیں گی جو ان کو ملیں گی. ہمت انہوں نے بھی کی تھی, کوشش انہوں نے بھی کی تھی, نفس کو انہوں نے مارا تھا, آج انسان اپنے نفس کو مارے, اس چیز کو کیوں آپ کا میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ مجھے پسند ہے, اور اللہ نے کہہ دیا یہ بات اور یہ فعل مجھے پسند ہے, اس سے رغبت کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اپنی طرف سے تم ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو اللہ نے کہا کہ تم بیٹھ کے صبح فجر کی نماز پڑھ کے آدھا گھنٹہ ذکر میں بیٹھ جاؤ, وہ ہم نہیں کر سکتے. تو وہ ساری رات کا جو قرآن پڑھنا آپ کا مقبول ہوگا, یا وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا جو مقبول ہوگا وہ ہوگا؟ تھنک اٹ, وہ آپ کی ہے, آپ کے نفس کی عبادت ہے, اور یہ اللہ کے پسند کی عبادت ہے. کوئی گارنٹی نہیں اس کی, اس قرآن کی رات کو آپ پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کا نفس ہے, सुतगो पर भी है, रिया भी है, हजारों चीजें, लेकिन जो आधा घंटा आप पढ़ रहे हैं अल्लाह ने उसको इतना पसंद फरमाया कि तेरा आधा घंटा मुझे खुश कर, जो बात मेरी मार के जो बैठा है एक हज और एक उमरे का सवाब ले जा। एक हज एक उमरा जो रिकमेंडेड, जिसका लिफाफा खुलेगा अल्लाह के नबी ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा बशारत दी है। नजर आता है घर बैठ के कुरान पढ़ो, उसमें नजर आ जाएगी। दो उम्र कर लो, किसने कहा इतनी उम्र आप करें, किसने कहा आप इतनी हाजी करें, क्या यकीन है वो उमरा और जो हज हम करते हैं क्या उस सलाहियत पे हो रहा है वो हमारा, क्या कबूल भी हो रहा है, नहीं हो रहा। अल्लाह सबको कर रहा है, बार बार कर रहा है, ये नहीं मैं कहता, लेकिन वो तो एक ऐसी ऊंची जगह जो रिजल्ट है इंसान का। हमसे यही नहीं होता कि जो अपने घरों में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, वहां पे वो एक काम कर लो जो अल्लाह का नबी कहता है कि तुम आगे सवार जिक्र कर लो, ये हमसे नहीं होता। उमरा हज के लिए भाग रहे हैं, वहां अल्लाह आपसे सवार कर ले कि बेवकूफ वहां तो तू अमल करता, यहां तू अपनी मर्जी से आ रहा, वहां मेरी मर्जी चल रही है, जो मेरी मर्जी चल रही है एक हज उमरे का सवाब मैं वहीं दे रहा हूं तुझे। बात समझ आ रही है, इंसाफ की बात करें, मतलब एक आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं, कोई मैं बोलिए कि आपको फोर्स नहीं कर रहा, खुदा के वास्ते हमें अल्लाह ने अकल दिमाग दी है, सिवाय फलूस के कोई पता ही नहीं। हमें मुल्क चेंज करेंगे फलूस के लिए, दीन चेंज करेंगे फलूस के लिए, घर छोड़ेंगे फलूस के लिए, भागे फिरेंगे दुनियाओं के अंदर किस मुल्क को सुनेंगे फलूस के लिए, लेकिन घर से दूसरे घर में आके हम आधा घंटा खर्च नहीं कर सकते अपने रब के लिए। थोड़ी बहुत जस्टिसफाई करो यार, अपने साथ कुछ तो अपने साथ हम इंसाफ करें, क्यों जुल्म कर रहे हैं हम लोग अपनी जिंदगी के साथ, कुछ तो इंसाफ आदमी करे कि कल अल्लाह के दरबार में मैंने हाजिर होना है, कौन सी नमाज तू पेश करेगा। अल्लाह तआला का मैंने तो तुझे दीन बहुत लिमिटेड दिया था, वही इतनी मेहनत नहीं थी, मैंने तुझे नहीं कहा तू रात को उठ, रात को जा, तहज्जुद पढ़, नफिल पढ़, इशराक पढ़, मेरी दीन की तरफ तू आएगा तो बड़ा निकाल छांट के ये देख कि मुझे क्या क्या चीज महबूब है, एक लिस्ट निकाल ले आदमी की, अल्लाह क्या क्या चीजें प्यारी है, सारी वो चीजें प्यारी हैं अल्लाह को जो नबी को प्यारी है, अल्लाह की पसंद नबी की पसंद एक साथ है बिल्कुल। जब ये नहीं हो कि अल्लाह ने पसंद किया नबी ने पसंद ना किया, नबी ने पसंद किया अल्लाह ना पसंद किया हो ना, वरफा नाला का जिक्र, जहां मेरी पसंद चलेगी और तेरी पसंद चलेगी। तो नहीं समझ आता, पता नहीं कौन सा दिमाग हमारा, किस कौम वाला दिमाग है हमारे अंदर, क्या हो गया, मशीनें फेल हो गई हमारे समझ की मशीनें फेल। कभी तो बैठ कर सोचो कि दीन अल्लाह को जो है, दीन इसका नाम है कि अल्लाह की पसंद का अमल करना। कैसे कैसे प्यारे अमल अल्लाह ने बताए, छोटे से और मुख्त से भाई नहीं होता। तो साहबा ग्राम तशरीफ रखना, अल्लाह नबी कसम का कसम खाना किसी जात पे कि जो आज इस वक्त कर रहे हैं आप, इस पे कसम खा रहे हैं अल्लाह के नबी कि बोलते में लोग बैठ के सुबह के तुम इसलिए बैठे हो, पे कसम खा के बताया मुझे। तो कितने लोग हैं इसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह तौफीक दे देते हैं, फजल पे आ गए मजमे में बैठ जाते हैं, मौजू को निकाल देते हैं, चलते चलते निकाल देते हैं, सुबह जो शैतान के वसवे चला बेकार, शैतान ने डंक मारा, देखा तो यह कि तो पक्का हो गया, इसको कैसे फारिग करूं मैं, उसको आता है फारिग करना। यहां तो ता हयात आखिरी सांस तक इस दुश्मन से हमने लड़ना है, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको, कोई वो वसवस ख्याल आपको आ रहा है जो अल्लाह की पसंद के दीन के खिलाफ लेके जा रहा है, मर जाए शैतान की बात ना माने। ये हदीस है मेरे सामने, वो कहता है कि तू जाके बैठ, तू किस तरह मुझे कह रहा है सो जा, ये कर फलां कर ये कर, पागल के बच्चे तेरी बात मानू या रब की बात मानू, नहीं फाइट करते हैं। और झुक जाते हैं, वो तुम नहीं हो, वो कौन है, वो शैतान है, हमेशा बर्बाद करने वाला, दूर से लेने जाने वाला, जिसको हम वसवसे कहते हैं, वो शैतान का डंक, शैतान समझाते हैं हमें, हमारे जिस्म में हमारे खून की तरह दौड़ रहा है वो, उसको अल्लाह ने पूरी छुट्टी दी हुई है। जब भी कोई ख्याल आए उसको पैमाना करो शेर हदीस से कि इसमें अल्लाह ने कोई फायदा बताया मुझे, अगर ये अमल करूंगा इसमें कितना फायदा है। फिर उस शैतान के वसवसे को सोचो कि ये जो वसवसा मुझे आ रहा है वो ये कह रहा है, ये कहता दफा करो अल्लाह की बात मानता हूँ इसमें ज्यादा फायदा नजर आता है मुझे। जैसे ही उठ के आप जाएंगे वो ज़ईफ़ है शैतान का धोखा, उसी को बैठ जाता है। तो ये अल्लाह ने सिस्टम क्यों रखा है, क्यों रखा है? अल्लाह कहता है इसी वजह से तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा कि तुमने मुकाबला किया है मेरे लिए किसी चीज के साथ। ये तो नहीं बस तुम चला जाओ नमाज पढ़ो, कहता नहीं ये तुम्हें दुनिया बनाए इसलिए है कि मैं जहां शैतान तुम्हें भेजा है इबादत के लिए तो तुम्हें रोकने के लिए एक चीज भेज दी है, अब देखना ये है कि तुम कितनी ताकत से उसको खत्म करके तोड़ के तुम मेरी तरफ आते हो। कद अफला मन ज़क्का हो दाव दस्सा, ये बात समझने बात। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा कुल फजलुल्लाह बि रहमतिही वज़ालिक, तुम मेरी नेमत हो तुम पर आ जाए, मेरा फजल मेरी रहमत तुम पर आ जाए बरस जाए किसी नेमत की शक्ल में, तो ये कोई मामूली चीज तो नहीं अल्लाह ताला कहता है। फिर यफ़रहू, खुशी मनाओ इस चीज पर, दिल को बाग बाग करो कि अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ने आज फजल रहमत कर दी है मुझ पे, फजफ रहो। हाँ समझ आ रही है आपको, आज मैं सुबह का जिक्र दे दिया सुभान, खुश रहे। वो कहे पैसा ही नहीं है, आगे इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये कैफियत तेरी कि तूने बैठ के मेरी बात के मुताबिक जो काम कर लिया उससे बदर्जा बेहतर है, इतनी बड़ी नेमत है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कौन सी चीज मिम्मा यजमून, जो चीजें तो दुनिया के लिए जमा करता है इसकी कोई वक्त नहीं उसके आगे। जिस चीज के लिए तू इस नेमत को छोड़ रहा है जमा करने वालों को पागल, वो तो तकसीम हो जाएगा तेरा माल। खैर मिम्मा यजमाउन, जो तू जमा करने वाली बातों को नेमत समझता है क्या? हाँ जी बस बड़ी नेमत है जी, मकान आ गया, बड़ा दादा बड़ा शुक्र है तू, हाँ बड़ा जी वीजे लग गए, ऐसी मुल्क से आ गए वापस आ रहे ने, बड़े खुश खुर्रम हमारे क्या खैर सिर, ये तो बेकार चीज है। खैर मैं तुझे बताता हूँ खैर क्या चीज है। ये जमा होने वाली चीज खैर नहीं है, ये नेमत नहीं है। नेमत किस चीज का नाम है? फरमाया अल्लाह कहते हैं नेमत मेरी वो है जो ना खत्म होने वाली चीज हो, ये तो खत्म हो जाएगी। हैर मजमा, इससे कहीं पर दर्जे बेहतर है वो चीज जिसको तू छोड़कर और जिस चीज को तू हासिल करना चाहता है, कि जिक्र छोड़ दो कारोबार चमको, जिक्र छोड़ दो नींद पूरी करके पैसे कमाओ, जिक्र छोड़ दो मुल्क छोड़ दो फला छोड़ दो, फरमाए खैर तो कोई है नहीं, ये तो बेवकूफ तू तो क्यों नहीं तेरे में कल आते कि आज वही नोट तेरी जेब में कल जाके तू तो कसाई को दे देगा। आज तेरे जो नए नोट तूने जेब में रखा है कमाया है मेहनत करके नमाजें छोड़ के जिक्र छोड़ के अल्लाह के दीन को छोड़ के, वो तेरी जेब में बड़ी बेवफा चीज है, दुनिया तेरे सामने ही है, खुद ही अपने हाथ से दे देगा तू उसको। और वो तुझे क्या चीज देगा? एक चिकन दे देगा, वो चिकन जो देगा जो पका के खाएगा वो गायब हो जाएगा तेरे पेट से, पखाना बन के निकल जाएगा। मुझे पता है कौन सी नेमत है फिर, समझे? कुल फजल भी रहमत है अल्लाह, फजल मेरी रहमत जो है, ये फ्रो खुशियां मनाओ उस पर। कैसे कि जैसे कैसे खुशियों में कैसे करते थे सहाबा कराम ने करके दिखाया कि हमारी इतना हो जैसे हम अल्लाह की इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं इन पोशीदा कपड़ों के साथ, भूख और प्यास के साथ जिसमें अकड़ पड़े हैं हमारे चमड़े की तरह हमारे जिस्म हुए हैं, मुंह हमारे खुश्क हैं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं, खाने का होश नहीं है, गर्मी तपे हुए हैं, बैठे हुए हैं किस चीज पर कि हम अल्लाह की उस बात पे एहसान पे शुक्र कर रहे हैं। वो नहीं तुमने माल दे दिया फला दे दिए, इस पर कभी शुक्र नहीं, इस पर कोई शुक्र नहीं किया जिस पर हम शुक्र करते हैं। वो शुक्र किस पे करते हैं? आखिरत पे करते हैं। सुभान अल्लाह। की चीज तो ये है, इस्तेमाल तो ये है। समझ आ रही नहीं है? ये फ्राहू कुरान खुद कह रहा था जश्न मनाओ, खुशियां करो। तो जब अल्लाह के नबी ने उनको देखा, और कुछ मामूली चीज नहीं, अल्लाह यानी अल्लाह के नबी का ताज्जुब करना उस फेल पर, अमल पर कितना बड़ा अमल होगा जो आज आप कर रहे हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं एहसास नहीं इस चीज का। मेरे भाई जब खुलेगी ना किताब, और जब सुभान अल्लाह हशर के अंदर याकूत के और संगमरमर के तख्तों पे आपको बिठाया जाएगा, और आपके चेहरे चौदहवीं की रात के तरह चमक रहे होंगे, और पूरा हशर का मैदान आप पे रश्क खा रहा होगा, और वो पूछेगा कि ये कौन लोग हैं, नबी हैं, सिद्दीक हैं, शोहरे कौन लोग हैं, तो फिर अल्लाह जवाब देगा आपकी तरफ से, ये मेरे महबूब वो बंदे हैं जिन्होंने मेरी पसंद का अमल किया था। सुबह उठते थे, मस्जिद में जाते थे, मैंने जमा किया था उनको, वहां पर मजमू लगाया था, बैठ के शराख तक अल्लाह जिक्र करते थे, ये वो लोग हैं। हम तो नहीं मानते भाई, हमारा दिन तो और है, बस बस जय दिन जल्दी नमाज पढ़ो, सारा पढ़ो, सो जाओ बस, ठीक है। उनके लिए तो ये बशारत, तुम्हारे लिए कौन सी बशारत आई? खड्डे में गए, जवानी गए, बुढ़ापा बेकार, बचपन खत्म, मकान बना लिए, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया, शादी कर ली, नथिंग एल्स, कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं दिया। ताज्जुब में जिस चीज को नबी ने डाला, वो कितना बड़ा अमल होगा कि अल्लाह के नबी कर, वल्लाही वल्लाही इतना बड़ा अमल तुम कर रहे हो, मुझे घर से निकाला, अल्लाह ने आयत निकाली, वही आई, मुझे तुम्हारे पास भेजा, आखिर तुम कर क्या रहे थे? मैं तो समझा पत्नी कितना बड़ा जहाज, पत्नी क्या कुछ कर रहे हो, तुम कौन सा रॉकेट बना रहे हो, और तुमने तो कमाल ही कर दिया इस अमल पे यार, क्या बात है जिक्र अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं अली मुर्तजा के सुभान अल्लाह। ये है फजल, किसी अल्लाह वाले का मिल जाना जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे, याद रखे, आपको सुन्नतों पे चला दे, आपके हुलियों को बदल दे, आपके रुखों को फेर दे, आपकी समझ को चेंज कर दे, इस दौर के अंदर ये क्या है, ये है फजल भी रहमती जालिक, ये हमें कहा जाए कि ये फजल है तेरा अल्लाह की बड़ी रहमत, ये है कि मैं तुझे इस आदमी से मिला दिया पागल, जिस तरह नबी को मैंने ले आया इस दुनिया के ऊपर, ये मेरी सबसे बड़ी रहमत थी, सबसे कीमती घड़ी थी, सबसे बड़ी रहमत वाली घड़ी थी वो, कि जिस वक्त मैंने नबी को जमीन पर लेके आया, इंसानियत को जिंदा कर दिया, मोहसने कायनात तशरीफ ले आए, रुख बदल दिए पूरी कायनात के, इसी तरह आज किसी अल्लाह वाले की सोबत का मिल जाना है और जिंदगी को तब्दील हो जाना, ये सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह ताला। आज अली मुर्तजा मिलता तो ये इमाम देखता मैं, ये धानी देखता मैं, ये बुरखे पर्दे देखता मैं, ये घर से निकले खराफात टेलीविजन में देखता मैं, कुर्बान जाऊं अली मुर्तजा का जो गुदाई की चिटाई पे बैठ कर कच्ची मस्जिद में बैठ के उसने कहा जाओ फादूकी साहब वहां काम करो, अल्लाह का जिक्र फैला, क्या बस क्या बसारत थी इस शख्स की। ये होते हैं अल्लाह वाले, ये नए बे रसूल हैं, उधर हुक्म दे दिया अल्लाह ताला कुरान की आयत है, कुल मेरे महबूब ऐलान कर, मैं बताता हूं किस कौन सी मेरी नेमत फजल और फजल है अल्लाह का, कौन सी मेरी नेमत रहमत है मेरी, मैं तुम्हें बताता हूं, ये सबसे बड़ी रहमत है जहां दीन मिल जाए इंसान को, राहत मिल जाए मेरे हबीब, इस कायनात के ऊपर, इस कायनात के ऊपर सबसे बड़ी नेमत तू है, समझ आ रही है मेरे हबीब, सबसे बड़ी नेमत इस कायनात में तू है, और उसका शुक्र करने वाले कौन है, ये सहाबा है सबसे बड़ी बड़ी जमात जो है, इन्होंने कुछ नहीं सीखा, वो भी तो हैरान थी ये मेरे आने की वजह से शुक्र कर रहे हैं ये लोग, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, कितनी बड़ी बात थी मेरा आ जाना, अल्लाह ने जो मुझे भेज दिया मेरे इस दुनिया के अंदर, सब कुछ छोड़ दिया उन्हें, माल दौलत औलाद सब कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ इस पे शुक्र कर रहे हैं कि हमें तू मिल गया, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। ये थे वो लोग, हम तो आज ये पढ़ सकते हैं बस ना, बस ये पढ़ नहीं आता है हमें, जुलूस निकालना आता है कि हम तो बड़ा शुक्र कर रहे हैं नबी का। सुभान अल्लाह, असल खुशी तो उन्होंने मनाई थी ईद मिलाद नबी की, ये है ईद मिलाद नबी। ये बात समझ आ रही, ये बातें आज इसकी निस्बत से कर रहा हूं कि ये शबे क्या है, शबे मिलादत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 12 रबीउल अव्वल है, उसकी नस्बत से बात कर रहा हूं, क्योंकि खराफात तो हर जगह शैतान ने फैलाए हुए हैं। बिल्कुल खुशी के वक्त है, विलादत का सुनना बहुत ही खुशी की बात है। हमारे अकाबिर लिखते हैं कि सबसे कीमती बड़ी घड़ी यह है, सबसे अजीम घड़ी यह है, पूरी कायनात में ऐसी घड़ी नहीं आ सकती वो घड़ी जिस घड़ी में नबी पाक की विलादत हुई थी, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। तो कुरान कहता है जफरू, अल्लाह कहता है मनाओ इसको, तो कहता है मनाओ, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और आपके बाद इस उम्मत को सबसे बड़ी नेमत होगी किसी को, आपका मुत्तबी, आपका आशिक, आपका वली कोई मिल जाए किसी शख्स को, उसके लिए सबसे बड़ी नेमत। आज भी मैंने देखा है जो लोग किसी अल्लाह के वली के हाथ बैत हो जाए, उस घड़ी को नोट कर लेते हैं दिन में, और जब वो घड़ी आती है तो जश्न मनाते हैं अपने जिस्म के अंदर, खैरात बांटते हैं, खुशियां करते हैं, पैसे लुटाते हैं, तोहफे देते हैं कि आज के दिन मुझे ईमान नसीब हुआ था मेरे हाथ में। इसको कहते हैं शुक्र करने वाले, से कुरान जिसको बता रहे यफरू, कुरान कहता है मनाओ इसकी खुशी के, मेरा नबी आया है, तो मना किया उसने, मना तो नहीं किया। ये कुरान कह रहे सबसे बड़ी नेमत मानते हो, नबी को ही नहीं मानते, सबसे बड़ा फजल मानते हो ही नहीं मानते, मानते ही नहीं मानते, तो कुरान की बात मान लश्फ रफू, खुशी क्यों नहीं मनाते फिर तुम। अब फौरन ध्यान जाएगा वो जुलूस वालों की तरफ, अल्लाह का अंदाजा आप लगाए कि कैसा उन्होंने इस्लाम का मुंह बिगाड़ के रख दिया। माजरत से बात कर रहा हूं, मैं कोई फिरके बंदे नहीं करता, देखिए मैं दिमागी बात कर रहा हूं आपसे। कहां सहाबा का खुशी करना, समझ आ रहा है आपको, जफरू वो इस बात पर खुश होते थे हमें नबी मिले, उस एहसान पे खुश हो रहे थे बैठकर, और तुम कहते तो हम भी वो खुशी मना रहे हैं ये काम करके, खाली गैर शरी काम करके, जिसको आज भी लगता है कि बिल्कुल फजूल बातें आप कर रहे हैं, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है जिससे। कहां साबा का अंदाज मनाने का, और कहां आपका कितना फर्क नजर आता है। वो कैसे मना रहे हैं, वो जिक्र अल्लाह के साथ एहसान को उतार रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहां, आपने क्या हरकतें की हुई हैं, समझ आ रही बात आपको। तो है लयफरू, मनाओ खुशियां मनाओ, लेकिन कैसे मनाओ, कहते हैं आज मैं पता नहीं खुशी कैसे मनानी है, साहब ने करके दिखा दिया, करके दिखाया, और नबी ने जाके रिकमेंड किया है, आप हैरान हो गए, तो वल्लाही तुम काम इस वजह से कर रहे हो, मेरे आने में तुम खुशियां मना रहे हो तुम लोग। उन्होंने कुछ झंडियां लगाई थी, कुछ चिराग जलाए थे, कुछ जुलूस निकाले थे, केक काटे थे, उन्होंने बड़े बड़े वो बनाए थे, गुंबद बना के बाजारों में निकाले थे, इंसाफ करें आप, वो तो भूखे नंगे प्यासे। अब मुझे बताए उनकी जश्न मनाना अल्लाह कबूल फरमाएगा, ये मनाए ये मनाना कबूल फरमाएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, यस सर, ये आज की पैदावार है। वो कौन थे, वो नबी के जमाने की बात थी, और जिस बात ही नहीं थी उस पर खुद नबी अप्रिशिएट कर रहे हैं खुद कि कमाल कर दिया तू तो यार, खूब ईद मिलाद नबी मना रहे, तुम्हें कमाल किया साहबा, यस्कुल्लाहन अहमदहू, हम तो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला को, शुक्र कर रहे हैं कि तू मिल गया हमें। बात समझ आ रही मेरी, पता चलता है दिमाग ठुस हो गए उन लोगों के, नफ्स ने काबू कर लिया, शैतान जगड़ लिया उन लोगों, और उनको भी दूसरा फिर कभी कहा नहीं 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 पागल तो नहीं हो, कुरान कहता है हाँ, अब फर्क क्या है, लजफ रहू, इस पे फर्क आता है, खुशी जरूर मनाओ, हर चीज पे वो जो तुम्हें दिन तक ले जाए। समय बताया, रसूल मिले बेहतरीन खुशी, बेहतरीन घड़ी, बेहतरीन बात, अल्लाह का वली मिला बेहतरीन बात। क्यों? कि वो आए उन्होंने दुनिया के रुख फेर दिए, अल्लाह का वली आता है वो जिंदगी को फेर देता है। सबूत है आपके पास? मैं तो जिंदा सबूतों के साथ बात करता हूं। ये कहां से आई ये जमात? ये कहां बिखरे हैं पूरे मुल्क के अंदर ये जमातें जो बिखरी हैं? मुझे क्यों जेल में डाला गया? मुझे क्यों पाबल सलासल कहा गया? मैंने को कत्ल किया था, कोई जुर्म किया था, मैं दहशत गर्द था, क्या वजह थी? क्यों? कि हक हमेशा मुश्किल में आता है। ये इसके बड़ा सबूत है। कोई गया आपका कोई आदमी, कोई बड़ा आदमी था कोई? नहीं। बड़े पद पे जाते हैं या नहीं? जिस रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। ये वही है मिशन कि जिसने इंसान के ईमान और दिल को जिंदा कर दिया, रुख को फेर दिया। कौन सा रुख? अब आपके लिए कोई नई चीज नहीं आई है, सिर्फ आपकी हयात बदली है, चेहरे बदले हैं। किससे मिल गया? सुभान अल्लाह। असल इनकलाब की तरफ आप चले गए हैं, जिस पे सहाबा जश्न मना रहे थे उस इनकलाब की तरफ आप भी चले गए। चूहे मने बैठे, क्या हो रहा है? करते रहो, देखें फासला होगा इंशाल्लाह हशर के मैदान में। हमारे पास हदीसें हैं, नबी की बशारतें हैं, अल्लाह का कुरान की बशारतें, जिस अमल को हमने किया अख्तियार किया हुआ है। ऐसे लोग सुनना जी, क्या सुनत करते हैं? सुनना सुनना जरूरी नहीं, ये सुनत ये कहाँ लिखा है सुनत? आप सुनते हैं, ये फैसले होंगे ना फिर इस चीज का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहे तब भी फैसला कर दे, लेकिन नहीं, ये इम्तहान की जिंदगी जी, दुनिया इम्तहान के लिए। हमें एतबार करना है अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के इशादात, अल्लाह के कुरान पे हमने एतबार करना है, किसी चीज पे नहीं। क्यों जी? अल्लाह यफ़रहु। इस नेमत का शुक्र कैसे अदा करें जब इंसान को ये रुख बदल दिया नबी के आने का? कैसे क्या करें, कैसे खुशी मनाएं? दिस द पॉइंट। यहां तक तो समझेंगे ना आप, यकीनन सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, और यकीनन इसको खुशी मनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मान गए। अब ये बात सवाल होती है कि अल्लाह यफरू को मनाए कैसे? अल्लाह ने उसके बता भी दिया कि उससे कहें खैर हो, उससे कहें खैर है, इस जो माल दौलत पे तुम खुश होते हो ना, उससे कहीं खैर है। इसकी असल खुशी क्या मनाओगे, कैसे मनाना? फर्क इतना है कि खुशी मनाए और खुशी मनाए कैसे। पढ़ा, अल्लाह ने हमें मौका दे दिया, हम जिंदा हैं, अपने ईमान की तजदीद करें आज की रात बैठकर। क्यों? लगत कान लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हुस्ना। मैंने जो तुम्हें नबी भेजा है किसी किस काम के लिए भेजा है? इतनी बड़ी हस्ती जात मैंने उतारी है, जिसके मैंने पहले हदीस आपको सुनाई कि आसमान उतर गया, चांद उतर गया, रोशनी फैल गई जमाने के अंदर। हदीस सुनाई ना मैं आपको, आपके आने की वजह से बुत कदे गिर गए, आग बुझ गए, शैतान भाग गए, बुत खत्म हो गए, ये सब कुछ आपके आने से वजह से हुआ। समझाई? तो ये सब कुछ जो हुआ, इतने बड़े इनकलाब जो दुनिया के अंदर आया, आप तशरीफ लाए, तो मकसद क्या था अल्लाह ताला आपको भेजने का? क्यों? आपकी शान को दिखाना मकसद नहीं था। हम तो उनकी हकीकत को तो पहुंच ही नहीं सकता आदमी। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तस। शैतान ने उस बहसों में लगा दिया, इनमें गैब है नहीं, ये जी हाजिर है गैर हाजिर है, नूपर है नूर है, ये तो शैतान ने भड़का दिया ना। हकीकत यह है कि जानते नहीं आपकी हकीकत क्या है। आपकी असल से हकीकत हम नहीं जानते, पता ही नहीं है उनके आपके। हमें तो वो पता होना चाहिए जो रुख अल्लाह ताला ने हमें उनको दिखा दिया, हमें उससे फायदा उठाना है। हमें ना गैब का पता है, ना हाजिर का पता है, ना नाजरी का पता है, हमें से क्या ताल्लुक? हमें तो लगा तुम्हें इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं जानू मेरा महबूब जाने, इसके रुख ही बदलता रहा हूं, कभी अहमद बनाया, कभी मोहम्मद बनाया, कोई हाशिर बनाया, कभी माही बनाया, सुभान ये हदीस बता रहा हूं। और तू लगाया आज मौलवी ना तू खाना तेरी नमाज ना रोजा ना खाल हराम, वो ये हाजिर है, ये गैर हाजिर है, वो ये काफिर है। क्या तमाशा लगाया इन्होंने अपने नबी के साथ। ये बातें समझ आ रही हैं, आप पसंद आ रही हैं, जिसको आ रही हाथ खड़ा करे। मतलब मेरे काम बन रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह। तो अब ये आदमी सोचे, समझ आ रही बात आपको, कभी इन पैसों में ना पड़े पागल हैं, क्यों ऐसी बात की है, इस पर पैसे ना सोचने पड़े। हमें ये सोचना है कि इतनी बड़ी हस्ती को जो उतारा लेकर आए, कायनात तब्दील हो गई, सारे वाकत आपको मैं सुनाया, आखिर ये क्यों आए, क्यों आए, किस लिए अल्लाह ताला उनको भेजा। लकद कान फी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने एक नमूना भेजा है आपके पास, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। और तुम्हें मैंने इसलिए भेजा है, अंदाजा लगे कि मैंने अपनी कायनात में मैंने अपने हबीब को, मुझे इतना प्यारा है कि उसको मैंने जमीन पे उतारा है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो भी जमीन पे मैं उतारू उसकी नकल करे। हाँ, क्या मोहब्बत है सर, बात मेरी नुकता समझ गया, आशिक है तो पता चल जाएगा, तो शायद हमें पहुंचा दिया अगर पहुंच जाएंगे। कि मुझे अपने महबूब से इतनी मोहब्बत है, मैंने पर्दों मिटाया था, मैंने सोचा मैं एक और चाल चलता हूं, दुनिया बनाता हूं, इस दुनिया को सजाता हूं, उसमें फिर लोग पैदा करता हूं, लोग पैदा करता हूं, इंसान पैदा करता हूं, फरिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं, एक नई मखलूक बनाता हूं, उसी मिट्टी से बनाता हूं जहां मेरा महबूब जाएगा, क्योंकि उसने वहां पांव रखने, वो मिट्टी कीमती हो चुकी है मेरे लिए, इसलिए मिट्टी से बने। सुभान अल्लाह, कदम मुबारक रखने थे हजूर के, इस जमीन पे आपके कदम रखने थे, जमीन को मुबारक कर दिया अल्लाह ताला। अजीब नुक्ता बता रहा हूं, आसमानों से बड़ी कीमत हो गई इसकी अब जमीन की, क्योंकि आपके कदम यहां रखने थे इस जमीन के। तो फरमाया इस जमीन में हमें भी कदम आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी मिट्टी से मैं वो मखलूक बनाऊं। जाओ वहां से गारा उठाकर लाओ, उस गारा को जमा करो, पानी डालो, फिर वो मिट्टी बनी, फिर मिट्टी से अल्लाह ताला इंसान को बनाया, फिर अपनी रूह फूंकी उसके अंदर, बड़ी ऊंची चीज बनाई इंसान को। फरमाया इस मखलूक में दुनिया भेजूं किसी लिए, इबादत की जरूरत नहीं, मुझे सजदों की जरूरत नहीं है, मेरे पास बड़ी मखलूक है जो सब कुछ कर रही है, मैं एक और चीज देखना चाहता हूं कि मेरा जो महबूब है उसको जाहिर करूं, और सारी दुनिया जो तक बनती रहे वो उसकी पैरवी करती रहे। फिर इतना खुश होता हूं जो मेरे महबूब की नकल करता है ना, ऑब्वियस बात है, कहते मैं वाह वाह हो जाता हूं उसको देख। लखत कान फी रसूल, और कोई कुछ नहीं चाहता, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ना इसका कोई मकसद है, क्यों भेजा, इसलिए भेजा कि बस मेरे महबूब के जमीन होगी, और जो भी मैं खादिम आएगा, जो उतरेगा वो इसी की नकल करने वाला उतरेगा, जो इसकी नकल नहीं करेगा गर्दन से पकड़ के जहन्नुम की आग में उसको फेंक दूंगा। मन अहब सुन्नति अहबानी, मन रगबा सुन्नति फलेसा मिन्नी, हदीस ने दोनों सुनाए आप, जिसने मेरी सुन्नत की मोहब्बत की सुन्नत से, मेरे तरीके पर रहा, मेरी तरह सोया, मेरी तरह बैठा, मेरे जैसा लिबास, जो लिबास मैंने पसंद किया, जो कलर मैंने पसंद किया, जो खाना मैंने पसंद किया, उसके साथ साथ वो नकल में चलता चला गया। जैसे जैसे तू नकल करेगा, कहते जो हब को मैं इसको अपना मशूक बनाता रहूं, महबूब बनाता रहूं। कमाल देखिए, पूरा महवर जिंदगी जो कायनात और जन्नत सिर्फ किस पर है, किस पर मुनसर करती है, सरकार दो आसमान की जात पर सर। महवर मरकज सेंटर पॉइंट आपकी जात है हर चीज के लिए, ना कोई जन्नत है ना कोई जहन्नुम है, सब की आबादी और गैर आबादी जो होगी किससे, आपकी जात गिरामी के साथ। मैंने यह ईद मुलादन जो मैं आपको करा हूं, समझ आ रही बात, यफरू खुश कर रहा हूं आपको उनके आने पर, मेरी दुआ कर, दुआ देना मुझे दे, खुश हो रहे नहीं हो रहे आप, आज पता लग रहा है कि सरकार आए सुबहान अल्लाह, आज ईद आदे मदी क्या कहते हैं, आदे नबी है, क्या सुहाना नूर है, अब दिल करते ना पढ़ने को, ये ना ना वो पढ़ते हैं पागल, उनको पढ़ना ही नहीं आता, तुम पढ़ो हमारे लिए सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। کیا عجیب نقطہ ہے آج اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ تو اس کی نقل کرتا جا, میں اس کو تجھے میں تیرا عاشق ہوتا چلا جاؤں گا. اور کسی بتائیں بولے تم تو ہے بننا, تم مجھے راضی کرنا چاہتے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے نا, کچھ نہ کر لقد کر پھر بس کچھ نہ کر. جن جو محبوب میں نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا احسان اتنا بڑا ہے, تو اسے ایک کام کر فتبونی, نقل اس کی کر میں تجھے اپنا محبوب بنا. یکفلنا جنوں کا وہ تو انسان ہے, جو گناہ تجھ سے ہوئے کچھ بھی ہوئے سب معاف کر دوں گا. کرو گے نکل ابھی بھی یہ لا یفرو, یہ ہے لفظ خوشی منانے کا کہ تجدید کریں آج اپنے ایمان کی کہ آج کے بعد زندہ رہیں گے. لقد کان فی رسول اللہ, تو ہم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ سوائے نبی کی اطاعت کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. رات کو سنما لگانا ہے, امامہ پہننا ہے, سفید لباس پہننا ہے, جمعے پہ جس سرکار آتے تھے ان کی حدیثیں پڑھنا ہے. آپ کیسے تیار ہو کے آتے تھے, آپ خوشبو کیسے لگاتے تھے, آپ کے لباس میں کیسے چلتے تھے, آپ نے کیا جمعے پہ پہنا, ہر فعل جو ہے اس کی کتاب پڑھتے جائیے, عمل کرتے جائیے, اللہ آپ کا عاشق ہوتا چلا جائے. کائنات کی سب سے بڑی عبادت اتباع رسول, کوئی عبادت کوئی ساری عبادت. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ باری ربی روپل جی بلا دیتا ہے, سمجھ آ رہی نہیں بات؟ خوشی کیا خوشی کہ اتباع کرو اس کی, اس کی اتباع کرو گے میں بھی خوش ہوتا چلا جاؤں گا. اس کو تمہاری اتباع سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے, نبی کو اس کو کیا کر, وہ تو ایک چیز کر کے چلا گیا. اور میرا محبوب کیونکہ وہ کام میں نے تم سے کروانے کے لیے تمہیں بھیجا تھا, کسی نبی آئے 124,000 کر نبی, کسی نبی کی کوئی چیز میں نے اشتہار نہیں کی, لیکن اس نبی کی تو گھر کی باتیں بھی بتانے لیے ایسی عورتیں رکھ دی, اس کی بیوی رکھ دی جو ایک ایک بات خود تمہیں بتاتی رہی. میرے نبی ایسے سوتے تھے, وہ ایسے باتیں کرتے, کسی بھی کوئی بیوی بتاتی اپنے خاند کی باتیں, آپ کی بتاتی ہے شاید ساس کو بتا دیتی ہوگی, میں نے روٹی نہیں دینا, میں نے پیسے کوئی نہیں دینا, میں نے لایا کرتا ہے جی, اس بنڈیا نو دیکھتا پھرتا ہے, یہ تو کرتی ہوگی بات. عائشہ صدیقہ پوچھے کیسے چنا عائشہ کو, حفظہ کو, زینب کو, یہ چنی ہوئی عورتیں ہیں ساری الحمدللہ. کیسی کیسی حدیث ان سے نکلی ہوئی ہیں آپ بتائیں, ایسی چیز کہ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو کہ جس میں کل آپ اور میں کہہ سکیں گے جی ہم کہ اس بات کی نقل کیسے کریں. بتائیں دل تو نہیں چاہتا کیا کریں, موزن صاحب آگے بات تو بڑی پیاری چل رہی تھی الحمد للہ. چلو آدھا عید میلاد میں آپ کو منا کر دوں گا انشاءاللہ ذکر کے بعد, کیونکہ جس طرح وہ جماعت شکر کر رہی تھی نیت کر لیں ہم بھی نبی پہ ہوں کہ آنے کی خوشی میں اللہ کا ذکر کریں گے. حسر اللہ احمد کہا ہم اس لیے شکر کر رہے ہیں, نعمت کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے تھے, ہم بھی انشاءاللہ آج کا ذکر اسی نیت سے کریں گے کہ اللہ کے نبی آج کی رات تشریف لائے تھے. سمجھا گئی بات؟ ہماری عید میلاد نبی ہو جائے گا. الحمد للہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المرسلین طه یسین نبیل المرسلین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجه امہات المؤمنین وذریاته اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا مدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة tangatama ulabra, ya azizu ya ghafa, ya rabbul alamin, ya rabbul alamin, ya rabbul alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma istabilna bi sunnati wa nafa'na bi mahabbati wa shanna bi zamrati ya kareem. Allahumma inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya qadiyal hajat iktahajatina ya dafiyal balayyat itwa balayyatina ya shafiyal amra ishfa amradina. Allahumma afina fi badni, Allahumma afina fi sami, Allahumma afina fi basri, la ilaha illa anta. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbihum huma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa ustadhiyana wa mashayikhina wa jami'al mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات اللهجاه منهم والأنوار برحمتك يا رحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.